लास्ट टाइम हमने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बातें की। तो अभी पहला श्लोक चालू है आज, माम काहा शब्द के विषय में थोड़ी बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि धृतराष्ट्र केवल एक ही बार बोलते हैं पूरी गीता में, और वो है पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक। और वो ये लड़ाई की जो जड़ है या मूल कारण है वो धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र का मतलब लास्ट टाइम क्या बताया था, याद है कुछ? क्या कहा था धृतराष्ट्र के विषय में? कामना के वश थे, राइट। अविवेकी मतलब पराये के राष्ट्र को, मतलब पराये धन को जिसने धारण किया था। धृतराष्ट्र यानी राष्ट्र और यानी राज्य। राज्य में क्या होता है? अगर धन नहीं हो, वैभव नहीं हो, तो राज्य का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तो ये उसको दृष्टिहीन कहा, मन और शरीर दोनों से। तो हमें भगवान ये कहते हैं कि आप भी दृष्टिहीन हो, अगर आंखें हैं लेकिन अविवेक से जी रहे हो, हाँ, दूसरों का पचा लेते हो, दूसरा का धन ले लेते हो, दूसरों का हम तुम्हारा जो हक नहीं है और वो हक ले लिया अनीति से, तो उसको धृतराष्ट्र कहा गया है। ये नहीं है कि वो एक बार धृतराष्ट्र हुए और चले गए, आज भी धृतराष्ट्र है, आज तो बल्कि बढ़ गए हैं, दिन प्रतिदिन धृतराष्ट्र बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे में भी वो कमी हो सकती है, इसलिए ये गीता इतनी बढ़िया है कि सभी को ये देखना है कि हम कहाँ पर धृतराष्ट्र है, कहाँ पर दुर्योधन बन जाते हैं, कहाँ पर अर्जुन बन जाते हैं, कहाँ पर युधिष्ठिर बन जाते हैं। तो ये सारी सेना का वर्णन जो पहले अध्याय में दिया गया है वो हमारे ही अंदर है, ये सारी सृष्टि हमारे अंदर है और बाहर भी है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि धृतराष्ट्र जिसको बड़ा ही मोह था, आप सबको पता होगा कि उसको मोह था, किस बात का मोह था? गादी का। तो क्यों उनको गादी नहीं मिली? एक्चुअली अंधे होने की वजह से एक नियम होता है, हाँ, जैसे युद्ध के नियम होते हैं, स्कूल के नियम होते हैं, ड्राइविंग के नियम होते हैं, हर जगह नियम होते हैं। तो राजनीति में भी एक नियम होता है कि अगर आंखें नहीं है बाहर की तो कैसे देख पाएगा कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? तो उसको जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी? जिम्मेदारी तो उसी को दी जाती है जो बाहर से भी देख सकता है। तो उनके पास तो आंखें नहीं थी जन्म से ही, तो उनको बड़ा मन में हमेशा दुख रहता था कि ये मैं इसका हकदार हूं और मुझे गादी नहीं मिल गई है। तो जब मनुष्य की इच्छा खुद के द्वारा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? दूसरे के द्वारा वो इच्छा पूरी कराने का प्लान करता है। वो आज भी वही हो रहा है, अगर तुमको बहुत डॉक्टर बनने की इच्छा हो और वो पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? बच्चों को बनाओगे डॉक्टर, हाँ, क्योंकि खुद तो नहीं बने, इच्छा अधूरी रही। तो ये भी कह सकते हैं ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, हाँ, कई माएं होती है जो बात करती है तो कहती है मैं तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन लड़की को बहुत पढ़ाया है। तो उनको एक प्रकार का संतोष मिलता है कि हमको जो चीजें नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिली है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक तब है जब सबकी ओर जा रही है, सब सुख देने वाली हो। अगर असत है, हाँ, तुमको धन चाहिए, तुम्हारे पास धन नहीं है, तो ये नहीं कि भी बच्चों के द्वारा तुम धन कमाओ और फिर उसको भोगो, वो तो गलत हो जाएगा, वो स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। और जो हमारा स्वभाव नहीं है वो स्वाभाविक हमको दुख देने वाला है। तो माम कहा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये माम का शब्द की वजह से ही उस वक्त भी युद्ध हुआ था, आज भी युद्ध हुआ हो रहा है, और भविष्य में भी युद्ध होने वाला है, और ये चालू ही रहने वाला है जब तक सृष्टि है। तो भगवान ने ये रहस्य बताया है कि अगर तुमको दुख में से मुक्त होना हो, हमने धृतराष्ट्र का जीवन तो देख लिया, ये कितना अच्छा उदाहरण व्यास जी ने दिया कि देखो उन्होंने कितना महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ और क्या हुआ अंत में, सबका नाश हुआ ना। हाँ, तो हमको भी ये सोचना है कि अगर हमने धृतराष्ट्र की तरह मोह रखा, हाँ, मेरा और तेरा, माम कहा का मतलब है मेरा, माम का शब्द में बहुत अर्थ निकलते हैं, माम का, माम का यानी मेरा और तेरा, मेरा तेरा कब करते हैं, दो भाग कब करते हैं, जमीन के या क्या बोलते हैं तुम्हारा जो हिस्सा होता है जायदाद का, हाँ जायदाद के हिस्से कब होते हैं, जब हम भेद देखते हैं, हाँ भेद देखते हैं, देखो एक ही घर में एक ही माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो साथ में खेले हैं, साथ में बैठे हैं, सब कुछ साथ में किया है, बड़े हो गए तो जायदाद का हिस्सा मांगते हैं, तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारे में अब कुछ भेद सा आने लगा, और वो भेद क्यों आता है, स्वार्थ मोह और मेन थिंग अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से हम भेद महसूस करते हैं, भेद नहीं है, हकीकत में भेद नहीं है, हाँ लेकिन हम महसूस करते हैं, भ्रम हो गया है हमको कि हम अलग हैं, और ये अलग भ्रम हो गया तो फिर हम स्वार्थी बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं मतलब हमारा दुख की शुरुआत हो गई। तो जब ये धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई ये धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में ये युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं, हाँ उसमें मेरे मेरे पुत्र ने, और उन्होंने ये कहना चाहिए था धर्म की दृष्टि से, एक मनुष्य की दृष्टि से कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, ये क्या कहा, मेरे मतलब मेरे अलग है और भाई के अलग है। देखो भाई ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना और उसी प्रकार सबको शिक्षा देना, लेकिन उन्होंने तो भेद देखा, और भेद क्यों देखा, इस वजह से देखा कि दुर्योधन का मोह उनको बड़ा था, जो उनको मोह था कि भाई मुझे राजा बनना है, मुझे वैभव प्राप्त करना है, मुझे धन चाहिए, तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई, और दुर्योधन भी वैसे ही था, तो दुर्योधन का इतना मोह था तो वो मोह के कारण गलत करते गए। जब मोह आता है ना तो कोई भी व्यक्ति सही कर ही नहीं सकता है, ये भगवान का पहला नियम है, मोहित व्यक्ति कभी किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा, चाहे हमको उसका स्वीकार हम करें या नहीं करें, और इसीलिए हम दुखी हैं। जब मोह आएगा तो मोह का स्वभाव ही दुख है, और प्रेम का स्वभाव ही सुख है, क्योंकि प्रेम में कोई भी आशा नहीं है और मोह में हमेशा आशा है। अब थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे 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 हम गीता करेंगे ना तो आपके समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। हमारा रियली स्वभाव प्रेम करना है, मोह करना नहीं, क्योंकि वो हम कर ही नहीं सकते हैं। और ये धृतराष्ट्र है, उन्होंने देखो माम कहा यानी मेरा, किसको मेरा माना उन्होंने, अपने बच्चे को। अच्छा, अपना बच्चा अपना होता है, तुम्हारा क्या है चलो बताओ, तुम्हारा इस संसार में क्या है, जिसको तुमने अपना माना है, कुत्ता अपना है, तुम उसको ट्रेन कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम करवा सकते हो, कुत्ता अपना है, बिल्ली अपनी है, घर अपना है, क्या है अपना, बच्चे अपने हैं, नहीं है कुछ भी अपना, साथ तो आती लेकिन अपना क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा देखो कितना क्लियर है, बड़े होशियार हो गए हो, बात समझ में आ गई कि रियली अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र ने मान लिया कि ये बच्चे मेरे हैं, हाँ मेरा शरीर मेरा है, तो हम अपने शरीर को अपना मान लिया, जिस चीज को हम अपना मानते हैं ना तो नियम के अनुसार उस वस्तु से हम, वो वस्तु हमारे वश में होना चाहिए। अगर शरीर को हमने अपना माना, चलो बाहर की बातें छोड़ दो, अब तुमको इतने अनुभव हुए हैं ना तो तुमको पता है कि कोई अपना इस दुनिया में नहीं है, हाँ ये अनुभव हो गया दुख के कारण, माना इच्छा नहीं चाहती फिर भी हमको अनुभव कुछ ऐसे हुए, बीमारियां आई, स्वजनों के अनुभव ऐसे हुए, तो अब धीरे 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 पता लगा कि रियली संसार में कुछ भी नहीं है और कोई भी अपना नहीं है। दुख के समय में केवल सच ही सामने आकर अपना रक्षण करने वाला है। अगर ये अनुभव नहीं हुआ हो संसार में तो अभी आगे होगा, लेकिन पता है कि कुछ न कुछ अंश में तुमको ये अनुभव हुआ ही है, लेकिन तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। देखो, हमने दूसरों को तो अनुभव, दुख के अनुभव से हमने सीख लिया कि कोई भी अपना नहीं है, लेकिन गलती कहाँ करता है आदमी कि अपने आप को, शरीर को, शरीर मेरा है ये माना है कि नहीं? अभी वो मान्यता है या चले गई है? लेकिन अभी शरीर को मानते हो ना अपना, मानते हो कि नहीं?
नहीं है, नहीं
मानते हैं, नहीं है। अपना नहीं है, लेकिन अच्छा ये तो ज्ञान की बात हुई कि शरीर अपना नहीं है, ये आपको पता है। क्यों क्यों पता चला आपको? ये इतनी रहस्य की बात आपके समझ में कैसे आ गई?
वो एक तो साधन है शरीर,
शरीर तो साधन है बिल्कुल, लेकिन अपना नहीं है।
देखते हैं ना, देख,
हाँ, मृत्यु देख के
पता लगता है
नहीं है। अगर अपना होता तो तुम उसको अपनी मनचाही नहीं करा सकते? हाँ, जो वस्तु हमारी होती है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहे, हमेशा सुंदर रहे, हाँ, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा सुखी रहे, हमेशा खुश रहे, ये सब हम चाहते हैं। कहाँ से? अपने शरीर के पास से। लेकिन वैसे हुआ नहीं हुआ, देट मीन्स कि शरीर भी हमारा नहीं है। लेकिन हमने ये जो मान लिया है ना, उसकी सारी गड़बड़ है। हम जानते हैं बुद्धि से कि शरीर हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है और होने वाला भी नहीं है। ये भ्रम भी छोड़ देना आज से, कोई अपना है भी नहीं, होने वाला भी नहीं। तो क्या करोगे? बड़ी मुश्किल है जीना इस संसार में। तो अगर कोई अपना नहीं है तो जीना तो मुश्किल है। अगर सबको पराया मानने लगे तो किसके साथ आनंद करेंगे? क्या करोगे फिर? भले कोई है नहीं अपना, ओके, लेकिन अंदर से भगवान के साथ रिलेशन छोड़ो। लेकिन ये जगत है ना, एक याद रखो, ये जगत वैसे तो असत है, लेकिन असत के पीछे भी सत है। अगर सत नहीं होता तो असत भी टिक नहीं सकता। तो भगवान जो है वो भगवान का स्थूल रूप जगत है। हा? तो हमने क्या किया, शरीर को अपना मान लिया। तो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है ना, वो अपना है, और हमारे अंदर भी जो आत्मा रूप से भगवान बैठा है वो भी हमारा है। तो आत्मा आत्मा का ही हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, हमारे शरीर को अपना माना। हमने अपने शरीर को अपना माना तो पराये के शरीर को भी अपना माना, तो दोनों को अपना मान लिया और दोनों अपने नहीं है। जो हमारा नहीं था उसको अपना मान लिया, और जो हमारा नहीं है, हमारा रियली जो है, उसके प्रति हमने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे व्यक्ति में जो आत्मा रूप से भगवान बैठे हुए हैं उसको देखना है, और उसको देखोगे तो हम सबकी सेवा कर पाएंगे। तो देखो, इतनी ये सरल बात अभी लगती है, लेकिन जीवन में जब हम व्यवहार करते हैं तो मेरा तेरा आ जाता है। अपना बेटा रोएगा तो माँ झट से दौड़ेगी, दूसरे का बच्चा रो रहा है जाएगी, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताना पड़ता है ना कि माँ हूं मैं, तो भाई यू नो दम आ जाता है, वो रियल नहीं आता है क्योंकि उसके प्रति इतना मोह नहीं है। लेकिन देखो, जैसे ही पता लगा कि मेरा बेटा है, मेरी यू नो बेटे की कार का एक्सीडेंट है, तो क्या कैसा होता है? दूसरे की गाड़ी के एक्सीडेंट रोज तुम टीवी में देखते हो, कभी रोते हो क्या? ये सब माम कहा का प्रताप है, सब माम कहा का प्रताप है रियली। तो ये सत अगर हमारे हमको हम सतत याद रहे कि कोई अपना है नहीं, न कोई अपना था, न कोई अपना होने वाला है, ये भ्रम भी नहीं रखना। लेकिन एक बात है, हम सबको प्रेम कर सकते हैं। हमने ये बहुत गलत मान्य किया है कि हम चार व्यक्ति को ही प्रेम कर सकते हैं। घर में हस्बैंड हो तो उसको, वाइफ हो तो उनको, बच्चे हो तो उनको, माँ बाप है तो उनको, लेकिन भगवान ये नहीं। तो इसलिए हम स्वार्थी हो गए, मोहित हो गए, आसक्ति वाले हो गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये चार नहीं, ये सारा जगत तुम्हारा कुटुंब है, तो सबको अपना मानो। या तो दो रास्ते हैं, विवेकानंद ने कहा था दो मार्ग है सुखी होने के, या तो सभी को अपना मानो या किसी को भी अपना नहीं मानो अंदर से, कि बस कोई मेरा नहीं है लेकिन मैं सबकी सेवा करूंगी। ये अपने स्वभाव के अनुसार अगर सेवा, लेकिन सेवा करे बिना कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर ये एक यंत्र है, मशीन है। मशीन को भी देखो, अगर तुम कार को भी एक साल वैसे रहने दो, क्या होगा? हाँ, चलेगी वो गाड़ी? कोई भी यंत्र अगर उसको चलाए नहीं तो वो बिगड़ जाने वाला है। तो शरीर भी भगवान ने एक साधन दिया है, एक यंत्र दिया है, अगर उसको ठीक तरह से चलाया नहीं गया तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। और उसके पास से तुम आनंद, गाड़ी बिगड़ गई तो हमको आनंद मिलता है? क्योंकि अभी शॉपिंग के लिए जाना है, ग्रोसरी के लिए जाना है, काम अटक गया तो हम दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार शरीर से अगर हमने सेवा नहीं की, और वो भी सच्ची सेवा नहीं की, तो शरीर हमको बाधा रूप हो जाएगा। तो माम काम में ये हमको सीखना है कि स्वार्थ, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। अगर हमको सुखी होना है तो निस्वार्थ भावना हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक हमको सुख नहीं मिलने वाला है। जितनी निस्वार्थ भावना तुम्हारे मन में होगी, जितने प्रमाण में तुम्हारे दिल में जगत के कल्याण की भावना होगी, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत लिमिटेड शक्ति दी है, हम जाकर सारे जगत की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भावना जरूर कर सकते हैं कि भगवान सभी सुखी हो। लेकिन वो भावना भी नहीं होती है, भावना आती नहीं है, जलसी आ जाती है, प्राइड आ जाती है, लोभ आ जाता है, ममता आ जाती है कि मेरी ही फैमिली का अच्छा हो, मेरी ही फैमिली प्रगति करे। नेबर अगर प्रगति करे तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है, जलसी हो जाती है। मित्र को कुछ, मित्र की तारीफ हुई, अगर कोई भजन गाता है, अगर तुम्हारे से कोई अच्छा भजन गाया और उसकी तारीफ हो तो जलसी होती है। तो ये सब बातें अगर, और वो सब इसलिए होता है कि हम दूसरे को दूसरा मानते हैं। अगर कोई अच्छा गाता है, तुमने मान लिया ये तो मेरा ही है, मेरी ही व्यक्ति है, मेरी ही सहेली है, मेरी ही बहन है, तो जलसी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन पराया मान लिया तो देखो दुख आ गया। दुर्योधन धृतराष्ट्र यही चाहते थे कि दुर्योधन को राज्य मिले, हाँ, उनको तो खुशी होना चाहिए कि भाई मेरे ही बेटे हैं दोनों, एक भाई के हैं एक मेरे हैं, तो दोनों को भी अगर किसी के भी हाथ में राज्य जाए तो मुझे तो सुखी प्राप्त होगा। लेकिन उन्होंने भेद देखा और भेद के कारण ये सब सारा युद्ध शुरू हो गया। देखो ये, और उसके साथ साथ पत्नी भी, पत्नी को सहधर्मचारिणी कहा जाता है। पत्नी को क्यों, पत्नी को सहधर्मचारिणी क्यों कहा जाता है?
अच्छा,
सहधर्मचारिणी खाली पत्नी के लिए तो नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। पति के लिए भी है, भाई बहन के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी है, मित्र के लिए भी है, कोई भी सहधर्म। यहाँ तो धर्मचारिणी, क्योंकि पति पत्नी साथ में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए सहधर्मचारिणी कहा। कि सहधर्मचारिणी मतलब जो केवल धर्म में ही साथ देने वाली है, हाँ, अधर्म में साथ देने वाली नहीं है, धर्म में ही साथ देगी। अगर पति कुछ गलत करते हैं तो उसमें साथ देने का मतलब सहधर्मचारिणी नहीं है। लेकिन हमको यही सिखाया गया है स्त्रियों को कि पति कितना भी मूर्ख क्यों नहीं हो, गलत बात दारू पीता क्यों नहीं हो, लेकिन उसका, उसको सपोर्ट करना स्त्री का धर्म है। ये कोई भी शास्त्र में बताया नहीं गया है, हाँ, कोई भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि अंधे की तरह तुम उसको सपोर्ट करो। सहधर्मचारिणी का मतलब है कि पति जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसको उस धर्म के मार्ग पर साथ साथ में चलना है, साथ साथ में उसको भी आचरण करना है धर्म का। तो उसी तरह माँ बाप भी है, अगर गलत डिमांड करते हैं, बच्चे भी हैं गलत वस्तुएं मांगते हैं, पड़ोसी भी है अगर गलत बात करते हैं, तो किसी को भी उसमें साथ नहीं देना है। आजकल तो मित्र स्वजन माँ बाप जो धर्म पर चलते हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। देखो कैसा जमाना आ गया है, हमारा, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारे संत ये सब ये कहते हैं कि सभी ने एक दूसरों को धर्म में साथ देना है, अधर्म में नहीं देना है। क्योंकि धर्म के नियम के पालन से ही तुम सुखी होने वाले हो, ये भगवान का नियम है। इसलिए अगर अधर्म में साथ दोगे तो क्या होगा, उतना अधर्म फैलेगा, और अधर्म फैलेगा तो तुमको असर होने ही वाली है। हाँ, अभी देखो हवा गंदी कर दी है, सब कुछ गंदा, पानी गंदा कर दिया है, तो तुमको लगता है चलो ना नदी में फेंको, हमारे यहाँ कहाँ पानी है, हमारा हमारे घर में गंदगी नहीं आना चाहिए। तुम अभी इतने साहसी हो गए हम कि घर गंदा नहीं होना चाहिए, हमारा स्विमिंग पूल गंदा नहीं होना चाहिए, बाजू वाले का स्विमिंग पूल भले ही गंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भावना आ गई है। तुमको पता नहीं है कि उनका स्विमिंग पूल अभी बाजू में स्विमिंग पूल हो रहा गंदा होगा तो यहाँ पर बदबू आने वाली है। तो देखो ये सनातन जो धर्म है ना उसके नियम इतने बढ़िया है, अगर हम समझ जाए तो रियली सब सुखी हो सकते हैं। तो हमने इतना इन्हें संकुचित हमारी दृष्टि हो गई कि अगर हमारा घर स्वच्छ है तो हमको परवाह नहीं है पड़ोसी क्या करते हैं। उसका मतलब नहीं है कि तुम पड़ोसी का जाके घर साफ कर सकते हो, लेकिन कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए ताकि तुम भी उस तरह बात कर सको, जीवन कर सको, उसके अनुसार तुम बच्चों को भी सिखा सको। यहाँ तो यहाँ की संस्कृति कैसी है, डैडी होते हैं मम्मी होते हैं वो दो बियर पीते हैं तो बच्चों को भी 2 साल के बच्चों को पिलाते हैं, बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, बच्चों के सामने गंदा व्यवहार करते हैं, कोई रूल ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, तो क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ की सोसाइटी का, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो यहाँ पर। तो हमने भी वही करना शुरू कर दिया। आजकल पत्नी भी कहती, कई स्त्रियां होती है ना मुझे कहती है क्या हस्बैंड को खुश करने के लिए हम पीते हैं, देखो हस्बैंड नरक में जाएगा वो भी नरक में जाने वाली है। तुम्हारा धर्म पत्नी के अनुसार क्या था, उसको दारू पीने में साथ देने का धर्म था क्या, तो उसको सर्वधर्मचारिणी नहीं कहते हैं। पति को भी अगर पत्नी गलत कर रही है तो उसको बताना है कि सच्चा क्या है, मित्र की तरह रहना है, जब कोई गलत करता है तो अधिकार नहीं लाना है, बंधन या रिलेशन बीच में नहीं लाना है, लेकिन बताना है कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन जब खुद को ही पता नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है तो हम दूसरों को क्या हेल्प कर सकेंगे, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो ये जो सहधर्म की बात है वो खाली पति पत्नी को लागू नहीं होती है, लेकिन जितने भी रिलेशन जगत में बने हुए हैं, कोई भी रिलेशन ले लो, हाँ सभी रिलेशन का ध्येय हेतु गोल लक्ष्य जो भी कहना एक ही है कि हम दोनों शिष्य गुरु हो, दो मित्र हो, भाई बहन हो, सभी को ये ध्येय का याद रखकर साथ में धर्म को लेकर चलना है, अधर्म को लेकर साथ में नहीं चलना। ठीक ठीक बात है। तो माम कहा का बड़ा डीप ऐसा है कि भाई जब आसक्ति मोह जिसको कई शब्द होते हैं, आसक्ति जब आसक्ति होगी ना, एक व्यक्ति से आसक्ति होगी तो क्या होगा, उतने प्रमाण में किसी के साथ द्वेष हो रहने वाला है। लेकिन अगर सत के साथ भगवान के साथ आसक्ति होती है वो आसक्ति नहीं कही जाती है, क्योंकि भगवान तो अनासक्त है, भगवान तो स्वार्थी है नहीं, तो जब उनके साथ हम अटैच होंगे तो किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति के साथ हम अटैच हो गए तो वो हो सकता है कि वो तुमको गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। देखना तुम्हारी कोई सहेली होगी तो उसको तुम जल्दी से भगवान की ओर नहीं ला सकोगे, लेकिन वो तुमको जरूर ले जाएगी स्टोर में, किसी ना किसी बहाने ले जाएगी। हाँ तुम चाहते हो कि अभी तुम यहाँ आए तो चाहते हो कि भाई हम अपना मित्र को भी कहे कि यहाँ पर आए, लेकिन कितनी कठिन बात है किसी को लाना। हाँ लेकिन जब कोई संसार की बात आती है तो खींचे चले जाते, क्योंकि वो आकर्षण भी कम नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो वो आकर्षण भी हमको खींच के ले जाएगा जगत की ओर, स्वार्थ की ओर, ममता की ओर, आसक्ति की ओर। तो देखो सच क्या है गलत क्या है ये तो सबको पता है। अभी आपने कह दिया कि भाई कोई भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन फिर भी जब व्यवहार करते हैं तो वो बात याद रहती है। अच्छा तो वो हमको अभी याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हम शब्दों में बहुत होशियार हैं इसीलिए हमारा धर्म में हमको फायदा नहीं हुआ है, हम बुद्धि से बहुत जानते हैं लेकिन आचरण में जीरो है और उसको धर्म नहीं कहा जाता है। वो तो तोते को भी राम राम सिखाया ना तो वो भी राम राम बोलेगा, तो हम तोते बन गए अभी हा? लेकिन हमको क्या करना है, हमको भगवान ने स्वतंत्रता भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। तो जितना भी हम सुनते हैं उसके बारे में सोचो, और सोच के जीवन में अगर हमने उसको उतारा तो हम कह सकते हैं कि भाई धर्म जीवन में उसका आचरण हो रहा है, नहीं तो बस सुनते ही जाओ श्लोक और भजन गाते जाओ, बड़ी बड़ी बातें करे कि भाई कोई अपना नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो उतरेगा नहीं। लेकिन जब थोड़ा $10 भी खो जाते हैं तो क्या करते हैं, कितना दुख होता है $10 हम गंवा देते हैं तो, तब पता लगता है कितना मोह है धन का। बच्चा बीमार होता है तो कितनी चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है, तब पता लगता है कि स्वजनों का कितना मोह है। तो खाली बातें करने से हमको आनंद नहीं मिलने वाला है, डिटेच होना है। धन गया तो भी अपना तो था ही नहीं, और ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, जो आने वाला है वो जाएगा ही। हाँ, लेकिन वो नियम पता होते हुए भी हम कभी सोचते नहीं है। तो माम का शब्द याद रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं से युद्ध शुरू हुआ है, हमारा भी युद्ध वहीं है, हमको भी वही प्रॉब्लम है। ये बात नहीं है कि वो धृतराष्ट्र को ही वासनाएं थी, अभी हर मनुष्य को वासनाएं होती है, और जो वासना के गलत वासना के अनुसार जो चलता है ना, फिर वो दुखी होता है। लोग बात करते हैं कि भाई देखो हमारे पास्ट कर्म कुछ ऐसे है ना कि हमको ये सारा भोगना पड़ता है, पास्ट कर्म को ये वासना की जब बात होती है तो कहते हैं पास्ट कर्म कुछ ऐसे, क्या करे अब निभाना पड़ता है, करना पड़ता है काम भी, हम तो चाहते नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं छटक बारी, गुजराती में कहते हैं छटक बारी अपने बोती है, पर हिंदी में क्या है, क्या कहेंगे हिंदी को, राइट, लेकिन सरल शब्द में क्या कह सकते हैं, बहाने निकालते हैं, बहाने कह सकते हैं ना, हाँ बहाने निकालते हैं। लोग कहते हैं कि पास्ट को लेकर हम गुलाम है, पास्ट के जन्म को लेकर, पास्ट के कर्म को लेकर, पास्ट में हमने गलत जो काम किया है उसको लेकर हमको दुख है, गुलामी है, बंधन है, ये सब है। तो ये सच है या नहीं है, आपका क्या कहना है?
गुलामी तो नहीं है, लेकिन हाँ कर्म का है, लेकिन कहते हैं जन्म कर्म के लिए तो
क्या कह सकते हैं आप,
कर्म के लिए आपको भोगना तो पड़ेगा, अच्छा भोगों का भोग,
लेकिन पास्ट कर्म के लिए भोग रहे हैं, पास्ट कर्म की वजह से आपको आज दुख है, यह बंधन है, ये गुलामी है। कौन से कर्म से हमको दुख है?
पूर्व कर्म जैसा कुछ है ही नहीं, जो करो यहाँ करो तो होता है, जैसे खून छूटता है, जल जाता है, लेकिन हिंदी में भी कोई आता है दुआ लिखती, लेकिन जब आप विमान को बुलाते हैं दूसरे पीछे जाने पीछे अपनी बिहेवियर रेगुलर नहीं रखते तो अपने आप ही सबको बुलाते हैं दुख से, ऐसा करना करो कुछ तुम्हारे सबके साथ, लेकिन जो होता है होने वाला ही, तो क्यों
याद तो नहीं करना है, लेकिन
अपने आप में क्या कुछ आकर सिखा रहे हूँ क्यों मेरे को नहीं हो, तो आराम से रोक दो, उसका सामना हुआ तो करो, नहीं हुए तो चलो तो भी,
लेकिन मोस्टली अज्ञानता की वजह से हम कई बार पास्ट कर्म को दोष देते हैं, पास्ट जन्म को दोष देते हैं। कई लोग कहते हैं अरे शादी नहीं करी होती तो कितने स्वतंत्र होते, उस टाइप की बात है, या हमने जन्म ही नहीं लिया तो क्या होता। लेकिन हकीकत ये है कि चलो पास्ट में तो हम अभी उसकी बात चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अभी जो दुख है ना उसका कारण क्या है, उसका कारण इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, डिजायर है। तो अभी जो हम सुखी और दुखी होते हैं तो अभी की वासना है, अभी जो हमारे वर्तमान में जो हमको बंधन है, गुलामी है। चलो अभी का बंधन क्या है, कार है, कार तुमको चाहिए तो बंधन रहेगा, तुम कह दो हमको कार नहीं चाहिए, हमको बंधन नहीं है। तो पास्ट की तो बात जाने, तो अभी जो हम दुखी है उसका कारण हमको ज्यादा कम्फर्ट चाहिए, ज्यादा सब कुछ चाहिए, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं गलत, उसकी वजह से दुख है। हमको बड़ा घर चाहिए, किसी के साथ बराबरी करनी है, किसी के साथ कंपटीशन करना है, किसी को बताना है हम समाज में हमारी प्रेस्टीज है। आजकल प्रेस्टीज का बड़ा भूत लगा है लोगों के दिमाग में, लोगों को बताना है कि हम तो कितने बड़े हैं। एक भाई को कितने सालों से जॉब नहीं है, तो वो उससे छोटी जॉब मिल रही है नहीं ले रहे हैं, बोलते मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेते हैं तब प्रेस्टीज खराब नहीं हो रही, देखो उनका दिमाग कहाँ कहाँ कितना काम करता है। कर्जा लेना उसमें प्रेस्टीज खराब नहीं हो रही है। हाँ, जैसे वो ठाकुर लोग होते थे ना, वो हवेली, हवेली नहीं बस कर्जा लो और हवेली की शान वही रखो, नौकर वही रखो, कोई है ही नहीं वहां पर, लोग नहीं रहते हैं लेकिन हवेली की सेवा चाकरी करते हैं। तो देखो ऐसी ये सब परंपराएं जो होती है, अज्ञानता होती है, उसकी वजह से ये परंपराएं भी अंधी चलती रहती है। तो रियली अगर मनुष्य को सुखी करना है, तो अगर वर्तमान को तुमने सुधार लिया तो पास तो भगवान तुमको माफ कर देगा, चाहे तुमने कितनी ही बड़ी गलतियां क्यों नहीं की हो पास में, क्योंकि पास में गलती की होगी तो अज्ञान हो गए, तो भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पास में गलती की है, अज्ञान थी, मैं माफ करता हूँ। लेकिन अभी अभी तो तुम सुधर जाओ, अभी तो तुमको ज्ञान मिला है ना, तो अभी तुम डिजायर्स कम करोगे, इच्छाएं कम करोगे, वासनाएं कम करोगे, तो अभी सुखी हो जाओगे। नहीं नहीं मांगो ही मत कुछ, अभी मांगना बंद कर दिया सुखी हो गए, मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जब चाह होती है तो बंधन आता है, चाह के साथ गुलामी आती है। देखो उसका मतलब नहीं है कि घर हो तो उसको फिर अपार्टमेंट में चले जाओ, वो तो महंगा पड़ेगा फिर। भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करो, अगर है तो उसको क्या करो, घर में ही रहो लेकिन डिटेच हो जाओ। कल को अगर घर छोड़ना पड़े तो ये नहीं कहो कि ये घर मेरा था, क्योंकि मेरा जब छोड़ना, मेरा मान लिया है और छोड़ना होगा तो दुख होगा। देखो एयरप्लेन में जाते हैं हम, गाड़ी ट्रेन में जाते हैं तो वहां जो सीट में बैठते हैं उसके ऊपर मालिकी हो जाती है हमारी, टाइम हो गया खत्म, हमारा स्टेशन आ गया, उतर जाओ मूर्ख। तो वहां पर वो दिमाग में है कि नहीं ये प्लेन अपना नहीं है, यहाँ तो हमने भाड़े टिकट दी थी, तो उसी के अनुसार सब है। थोड़े समय के लिए भगवान ने हमको धर्मशाला में भेजा है, यहाँ पर ये घर भी धर्मशाला है, अपना रियल घर नहीं है, तो इसको भी अपना मत मानो। ट्रेन में जाते हो तो उसको 24 घंटे अपना नहीं मानते, इसको 24 साल अपना नहीं मानो, जितने साल जियो उतना मत मानो। लेकिन दो बातें हैं कि भाई मानना अंदर से नहीं है, लेकिन बाहर से जब कर्म करोगे तो मानना है, नहीं तो फिर मैंने कहा वैसे जीवन चक्र ठीक तरह से नहीं जाएगा, चलेगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि यज्ञ के ऊपर ही चल रही है, तो हम ये पंच महाभूत में से ही आए हैं तो उसको भी कर्म करने ही पड़ेंगे। तो माम कहा पांडवाः च एव किम् अपूर्वत् संजय। तो देखो यहाँ लगता है कि मामका की निशानी क्या है, हमारे में कितने प्रमाण में मामका है, ये कैसे पता चलेगा। मामका की कुछ तो निशानी होगी ना, कुछ निशानी है आपको, आप अपने आप को बड़े लगता है, नहीं मैं तो डिटेच हूँ, मैं तो किसी से भी अटैच नहीं हूँ, मैं तो बस अपना कर्तव्य करती हूँ, कैसे पता लगेगा, कुछ निशानियां हैं। क्योंकि ये तो जानना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे भक्ति करोगे, भगवान के लिए प्रेम बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे मोह ममता ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जड़ हो जाओगे, लेकिन सच्चा प्रेम करोगे। पहले गलत था, कोई प्रिय व्यक्ति है गलत भी करता है तो उसको बोलते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि उसको नाराज नहीं करना। अब आप गलत और सही दोनों को ठीक तरह से समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करोगे। तो माँ ने कहा कि निशानी क्या है, कैसे पता लगेगा कि आप में कितना मोह है। हाँ राइट, छूट जाएगा तो हमको दुख होगा। हाँ, धन छूट गया तो मान लेना दुख हुआ, तो मान लेना धन में मोह था। बच्चे कॉलेज में चले गए, दूर चले गए, तो मान लेना बच्चे याद आए, तो मानना कि बच्चों में मोह था। बच्चे उसका मतलब नहीं कि याद नहीं आए, लेकिन याद आ करके उसको रोना नहीं है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि पशु भी पंखी भी बड़े हो जाते तो उड़ जाते हैं, तो ये बच्चों को भी पंख नहीं है लेकिन 18 साल के हुए तो पंख आ गए हैं उनको। तुम्हारी जिम्मेदारी 18 साल तक ही थी, बच्चों को बड़ा किया, संस्कार दिए, अब वो जाने, उनके संस्कार जाने, उनके कर्म जाने। तो बच्चे जाने के बाद फिर उनकी चिंता करना, पशु भी नहीं करते हैं तो हमको तो पशु से आगे जाना है हा? उसका मतलब झड़ नहीं होना है, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि क्या हम बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं करें, बच्चों को हम राह नहीं दिखाए, बच्चों को उनके कर्तव्य के बारे में समझाए नहीं। तो किसने मना किया है? भगवान कहा, भगवान खुद अर्जुन को अपने कर्तव्य में लगा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप मोहित हो या स्वार्थी हो, कि हमेशा आप सज्जनों के पास से, मित्रों के साथ, पति, खास करके पति और पत्नी में तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, ये तुम चाहते हो। पति चाहती है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो, पत्नी चाहती है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो। तो ये जब खुद की इच्छा के अनुसार की चाह होती है तो वो काफी ममता है अधिक ना? ईगो आ जाता है। देखो कितने अच्छे पवित्र रिलेशन है, उसमें भी आज ईगो की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है। सब रिलेशन, सब संबंध इतने बढ़िया है कि उसमें इन चीजों को जगह नहीं होना चाहिए या महत्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा महत्व आ जाता है। फर्नीचर लाना है, उसमें भी दो ओपिनियन, पति कहते हैं ये रंग चाहिए, पत्नी कहते हैं ये कलर चाहिए। घर लेना है तो भी गड़बड़, बच्चों को कॉलेज में भेजना है तो भी गड़बड़, दो मत हो जाते हैं। देखो होते ही नहीं होता है, होता ही होगा। तो ये सब सारी ममता की निशानी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो। वो ये भूल जाता है कि सामने वाली व्यक्ति का भी एक मत है, एक मन है। जैसा मेरा मन है, जैसा मेरा मत है, वैसे सामने वाली व्यक्ति को भी अपना अपना मन है, तो उसको भी उसकी इच्छा के अनुसार चलने देना, उसको भी स्वतंत्रता देना, क्योंकि मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए। ये सारी बातें अगर समझोगे तभी धीरे 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 तुम्हारा जो गलत व्यवहार है, अविवेक का वर्तन जो करते हो, वो धीरे धीरे सुधरेगा। उसके ज्ञान के बिना ये वर्तन सुधरने वाला नहीं है। ज्ञान, ये जीवन एक पाठशाला है। देखो ये पाठशाला में से हर रोज कुछ न कुछ तुम सीख सकते हो, अगर आंख खुली रखी, अगर विवेक तुम्हारा जागृत हो गया, भगवान की कृपा से कुछ ज्ञान हुआ, तो हम कुछ न कुछ सीखते हैं। भले ही कितना भी हमने अनुभव किया क्यों ना हो, फिर भी भगवान रोज कुछ न कुछ हमको सिखाता है। सो पहला श्लोक में किसी को कुछ गड़बड़ है? ठीक तरह से समझ में आ गया है क्या बातें हुई?
एक बात पूछने की, जैसे अगर आप कहते हैं ना कि दो राय होती है, तो ऐसे में क्या करते हैं? दूसरे क्या सुन के तो वही करना चाहिए जो दूसरा है।
दूसरा यानी कौन?
मतलब जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं और सबकी अलग अलग राय होती है, हमेशा होता है
वो तो नेचुरल
होता है। हाँ। तो क्या करना चाहिए? ऐसे अपना बोलना चाहिए कि ठीक है जो भी आपने।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा
वो तो अपना राय देनी चाहिए,
अपनी राय तो जरूर देनी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, लेकिन क्या करोगे बताओ? किसके पास जाओगे? मित्र के पास? पुराने जमाने में प्रथा थी कि जब हस्बैंड वाइफ का कुछ प्रॉब्लम होता ना, तो गुरु के पास जाते। हाँ, और दोनों को ज्ञान था गीता का, धर्म का, तो वो धर्म का ज्ञान होता है ना, तो दोनों भी धर्म के नियम को याद रखकर अपना मत देते थे, इसलिए गड़बड़ कम होती थी। ओके, लेकिन अब वो धर्म के नियम नहीं आगे है, मेरा प्राइड आगे है, मेरी इच्छा के अनुसार करो क्योंकि मुझे पीला रंग पसंद है, वो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनको दोनों के प्रति प्रेम हो। अगर तुम अपनी सहेली के पास जाओगे तो नेचुरली तुम्हारी सहेली तुमको ही तुम्हारी साइड लेने वाली है, चाहे गलत क्यों नहीं हो। हाँ, अगर हस्बैंड के मित्र के पास जाओगे तो, और देखो लड़की की तो बड़ी मुसीबत है, अगर लड़की अगर सास ससुर साथ में रहते हैं तो उनका बात मानेंगे, तो सास ससुर किसका पक्ष लेंगे? ज्यादा क्या होता है, किसका पक्ष लेने वाले हैं? अपने बेटे का ले गए। और तुम्हारा लड़की के माँ बाप किसका पक्ष ले गए? अपनी बेटी का कभी नहीं लेते हैं, अगर लेते तो आज स्त्रियों की ये हालत नहीं होती। दामाद का लेंगे, क्यों?
कि वो बेटी को हमेशा बोलते
हैं। ये बात होती है, देखो स्त्री की गलत इतनी खराब स्थिति है कि खुद के माँ बाप को भी पता है कि खुद की लड़की अगर सही है तो भी नहीं ले पाते, क्योंकि अगर दामाद नाराज हो गए तो फिर लड़की सुखी कैसे हो सकती थी। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि नाराज करना भले ही गलत है, तो पहले ज्ञान होने की वजह से, शास्त्रों के नियम का भान होने की वजह से जो सही था वो बोलते थे, और फिर निर्णय यही होता था कि शास्त्रों के नियम के अनुसार ही चलना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे। यहाँ तो तुम गुरु के पास जाओ, गुरु ने कुछ कहा सुन लिया, फिर घर में आके वही झगड़ा। अरे वो तो कहते हैं उनको तो कुछ अनुभव ही कहा है, वो तो शादी नहीं की उन्होंने, और शादी की हो तो बोलेंगे उनका तो उनके जैसा हम थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अपना मत इतना पावरफुल है कि गुरु को भी फेंक देते हो, तुम्हारा चले तो भगवान को भी फेंक देते हो। भगवान को फेंक ही दिया ना, गीता को कौन कौन गीता के अनुसार चल रहा है, तो वो फेंक ही देना है ना। हाँ, फेंकने का मतलब ऐसा है कि तुम फेंक सकते हो, तुम तो सबको फेंक ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से तुमने फेंक दिया मतलब फेंक दिया, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तो दो व्यक्ति जब गलत होती है तो इसीलिए गीता सीख लो, तो दोनों को भगवान का डर लगेगा, असत के सामने असत क्या है सत क्या है, तो दोनों भी यही कहेंगे कि भाई तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने तो क्या फर्क पड़ेगा, कई चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुई है लेकिन फिर भी सुखी हो तुम। अच्छा, जहां पर मतभेद होता है वहां तो झगड़ा होने वाला है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कई बातें ऐसी भी तो है, शादी तुम्हारी दोनों की इच्छा से हुई थी उसमें तो तुम आनंद कर सकते हो कि अरे क्या हुआ, शादी तो हमारी दोनों की इच्छा के अनुसार हुई है, ये छोटी मोटी बातें क्यों बीच में लाए, कलर और घर और ये और वो। लेकिन जिसमें तुम्हारी मर्जी से होता है ना उसमें भी सुख है, मतभेद होता है तो वहां तो सुखी है हो ही नहीं तुम तो एक बहाना ढूंढ लेते हो दुखी होने का, एक बहाना ऐसा बन जाता है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा है, तो ईगो को थोड़ा ईगो हर्ट होता है।
If husband likes green and wife likes red, so wife is going to be the class or husband is going to be the class, one is not going, one is going. So that means ki there when you get together, green red ka prashna hi khatam ho jayega, you do whatever you want. So most of the time it's ladies who get the same.
Right.
Okay, that's what you like, you do it.
Mm-hmm.
Not because they can, but
right.
Because of the pressure.
Right.
So what to, now that we are learning this, so a situation like,
समझने के बाद अब तुमको थोड़ा अकल में आए तो तुमको तुमने ये सोचना चाहिए कि अच्छा मुझे ये कलर पसंद है, लेकिन अगर हस्बैंड को ये कलर पसंद है तो उनका सुख उसमें, तो अब मुझे तो पता लग गया है कि क्षणिक में तो सुख है नहीं, कलर की जहाँ पर बात है सपोज के, हाँ तो छोड़ दो तुमको कहाँ उसमें, अगर वो कोई तुम ये देखोगी अगर मेरा हस्बैंड खुश है तो घर में खुशी होगी, तो अपना थोड़ा सा ईगो छोड़ दो। लेकिन अगर गलत वो कहता है कि नहीं मैं बियर पीऊंगा और तुम भी साथ में पियो, तो वहां पर कभी भी सपोर्ट नहीं, गलत बात में कभी भी किसी वहां पर संबंध नहीं देखा जाता है कि तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की माँ हो या तुम किसी की बहू हो, अगर सास भी गलत डिमांड करती है तुम्हारा कर्तव्य नहीं है सपोर्ट करने का। सास हो, माँ हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, सत को संबंध के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है, कायर हो गए क्योंकि तुम बड़ी धोखेबाज है। इसमें अगर एक पेनी ली ना किसी के पास है, 10 पेनी देना पड़ेगा, इसलिए लेने के पहले सोचना, ये तुमको पता नहीं है लेकिन ले ही लेगी तुम्हारे पास से माया, तुमको छीन लेगी तुम्हारे पास से, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जहां पर तुमको कुछ नुकसान नहीं होता है, तुमको ज्ञान है कि अरे ये कलर की वजह से हम 3 दिन से झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे एक दूसरे से बोलने रही है, तो छोड़ने दो। जब तुम कभी आसानी से गिव अप कर दोगे ना, तो देखना हस्बैंड के मन में भी लगता है अरे देखो इतना वो क्यों ज्यादा विरोध करता है, पता है तुम भी विरोध कर रहे हो, इसलिए वो छोटे बच्चे की तरह है। ओके, लेकिन अगर तुम आसानी से गिव अप कर दो, देखना क्या होता है, कभी करके तो देखो क्या फर्क पड़ता है। दोनों को साथ में रहना है, दोनों को एक छत के नीचे रहना है, कलर पीला आए या गुलाबी आए दोनों को सोफे में बैठने से काम है, लेकिन नहीं, हर बात में ईगो आता है।
लेकिन जहां पर सर सरसर की बात होती है और अगर पति को लगा कि ये पत्नी गलत कर रही है और पत्नी को लगा कि ये पति गलत कर रहे हैं, कभी सपोर्ट नहीं करो। और सपोर्ट तुमने किया है इसीलिए दुखी हो आज, कभी सपोर्ट नहीं करो। लेकिन सपोर्ट तुम कब तुम ऐसा ले सकते हो स्थान, जब तुमको सत का ज्ञान हो, सत की शक्ति तुम्हारे साथ हो। अगर सत की शक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, दुनिया की कोई भी शक्ति की वजह से तुम असत के सामने लड़ नहीं सकोगे। चाहे कितना भी धन क्यों नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप कोई कितने भी पैसे वाले क्यों नहीं हो, भाई कितना भी पैसे वाला क्यों नहीं हो, कुछ भी तुम्हारे पास एबिलिटी होगी, तुम्हारी क्षणिक कोई भी एबिलिटी की वजह से तुम असत के सामने नहीं लड़ सकोगे। ये सेना के ऊपर से क्या पता लगता है, दो सेना है कितनी बड़ी। तो भगवान जब साथ में रहे तब कहीं पांडव जीते हैं? हाँ, पांडव ऐसे जीत गए क्या? पांडव में कुछ था? पांडव में एक ही लायक आती थी, भगवान का शरण ले लिया। अर्जुन को भी मोह था, धृतराष्ट्र को भी मोह था। अर्जुन को बोलता था ये स्वजन मर जाएंगे, भीष्म जी मर जाएंगे, तो मैं किसकी गोदी में खेलूंगा, किसके पास लाड़ करूंगा। तो मोह तो अर्जुन को भी था और धृतराष्ट्र को भी मोह था। मोह में दोनों कहां कमी थे। अर्जुन देखो ना कितने आर्ग्यूमेंट करता है, हा? अरे मेरे स्वजनों को क्या होगा, नर अभी गीता करेंगे तो पता लगेगा कितना अर्जुन को मोह था। लेकिन बच क्यों गया? भगवान का शरण लिया, भगवान के पक्ष में जाके बैठ गया, सेना को नहीं मांगा उसने, भगवान को मांग लिया। तो हमको भी ये देखना है कि भगवान हमने किसका पक्ष लिया है, सत का, भगवान यानी सत नियम, भगवान के नियम को भगवान कहा जाता है। तो ये नियम का पक्ष लिया है, सत का पक्ष लिया है, या हमको फ्रेंड को खुश करना है, या स्वजन को खुश करना है, या हस्बैंड को खुश करना है, या वाइफ को खुश करना है। गलत तरह से कोई खुश होने वाला भी नहीं है। अगर तुमने गलत तरह से उसको खुश करने की कोशिश की तो वो तो बाहर 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 से थोड़ी देर खुश हो गए, अरे उसको भी पता है, वो भी उसकी नजर से भी तुम गिर गए जिसकी तुमने झूठी तारीफ की, वो पता है। सब स्टूपिड है क्या बताओ? पता नहीं लगता है कि सामने वाली व्यक्ति मेरी झूठी, मुझे झूठा सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसको मेरे को नाराज नहीं करना है। हाँ, सबको अकल है, लेकिन अब दोनों स्वार्थी है तो गाड़ी चल रही है। तुमको कहीं पर स्वार्थ है, उनको कहीं पर स्वार्थ है। तो जब मतभेद होते हैं तो थोड़ा जब गीता करेंगे ना तो अपने आप जो गीता करेंगे ना देखना उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि वो सत्य पक्ष में आ गया है। तो वो धीरे 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 छोड़ता जाएगा कि क्यों बेकार में लड़ाई करे, तेरा है तो तेरा है। वो दो संत की कहानी तुमको पता है कि नहीं? दो संत थे, साथ में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये लाइफ थोड़ी शुष्क लग रही है, चलो आज कुछ अपन झगड़ा करते हैं। कभी झगड़ा ही नहीं होता था उनका, चलो आज एक दिन नक्की किया कि दोनों झगड़ा करेंगे। अच्छा, अब झगड़ा करना है तो किस बात में झगड़ा करें, धन तो था नहीं उनके पास। तो कुछ ऐसी ये वायर पड़े ना, वैसे वो रस्सी पड़ी हुई थी घर में, हा? तो कहने लगे चलो ये रस्सी को लेकर झगड़ा करते हैं। एक कहा कि तुमने ये कहना कि ये रस्सी मेरी है, दूसरे ने कहना ये नहीं मेरी है। तो दोनों झगड़ने लगे, 5 मिनट भी नहीं झगड़ा और एक संत ने कहा अरे ले जा तेरे को लेना है। तो क्या है ये छोटी मोटी बातों की तरह, बच्चों की तरह हम लड़ते हैं, प्राइड बीच में आता है। अरे कोई चाहे तुमको कुछ कह भी दे, एक दूसरे को शब्द के द्वारा कितने हर्ट करते हो, हस्बैंड वाइफ को कितना गिरा देते हो। तो बोल ले, तो जब कोई गलत शब्द कहे ना तो बोल देना कि ये इसकी अभी अकल, वो पागल हो गया है। जब आदमी क्रोधित होता है ना तो उसको पागल समझना चाहिए, ये एक नियम है अध्यात्म का। जब आदमी क्रोध में है, संसारी की बात है, हाँ फिर संत को मत समझना ऐसे तुम लोग, संत तो क्रोध हो गए तो जरा ध्यान देना, क्योंकि कुछ तुम गलत कर रहे हो, तुम दुखी होने वाले हो, तुमको बचाना चाहते हैं संत, इसलिए वो क्रोध कर रहे हैं। ओके, तुम्हारे लिए नीचे आ रहे हैं क्योंकि तुम दूसरी भाषा समझते नहीं हो, जड़ हो गए हो, तो इसलिए संत को क्रोध करना पड़ता है, वो तुम्हारी वजह से। और तुम फिर संत को कहते हो ये क्रोध कर रहे हैं क्योंकि तुमने गीता में पढ़ लिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसी तो बुद्धि चलती है। तो गीता को ठीक तरह से समझो कि कौन क्रोध करेगा तो सही है और कौन क्रोध करेगा तो गलत है। संसारी क्रोध करेगा तो बहुत गलत है, ओके, क्योंकि उसमें राग द्वेष है। और संसारी जब क्रोध करे ना तो मान लेना भी थोड़ी देर के लिए पागल हो गया है, तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, लेकिन उसको बोलना नहीं तू पागल है। अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए,
वही होना चाहिए।
नहीं वही नहीं, अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो भी सहन शक्ति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग है, चलो अंडरस्टैंडिंग मीन्स ज्ञान, ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन सहन शक्ति नहीं हुई, भक्ति मीन्स प्रेम, प्रेम नहीं रहा तो सहन शक्ति होगी नहीं तुम्हारे पास।
You are not only disturbing yourself, you are also injuring the other person.
यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि गलत को सहन मत करो, ओके? गलत को सहन तुम मत करो, गलत के सामने तो तुमको बोलना है, लेकिन देखो एकदम गीता के ज्ञान होते हुए दिन में 10 बार तुम गलत करोगे तो सहन करना और कभी उसके सामने लड़ना है, लेकिन कभी कभी लड़ना भी बंद करना पड़ता है, चलो जाने दो। ये आदमी की आदत बहुत अभी बहुत गहरी है, अभी जड़ मूल बहुत गहरे हैं, तो अभी थोड़ा उसको टाइम दो तो वहां पर क्या आएगा, टाइम दो। तुमने तो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान उसमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की आदत बहुत गहरी होती है, डीप होती है, तो ज्ञान होते ही तुम्हारी आदत सुधर जाने वाली नहीं है। तुमको ज्ञान हो गया, चलो आज क्रोध करना गलत है, तुम क्रोध छोड़ सकते हो, बताओ। हाँ तो क्या आएगा, फिर सहन शक्ति आएगी ना। तो अगर दोनों गीता सुनते हैं तो पता है कि भाई क्रोध करना बुरा है, थोड़ा इनको समय दो, अभी थोड़ा समय दो। अगर हर व्यक्ति को सुखी होना है तो वो खुद ही धीरे धीरे क्रोध कम कर देगा, क्योंकि उसको खुद को ही पसंद नहीं है गुस्सा क्रोध करना। तो जीवन में ऐसा है ना, हम ये एक लेके नहीं बैठ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ है या सहन शक्ति ही सब कुछ है, नहीं। हाँ जैसे एक शरीर है ना, तो हाथ की भी जरूरत है, पैर की भी जरूरत है, आंखों की भी जरूरत है। हाँ लेकिन इसकी हार्मनी नहीं हुई तो, उसी प्रकार संसार में अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, सहनशीलता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सब बातों का संजोग के अनुसार उतना ही महत्व है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पैर का महत्व ज्यादा है हाथ की बराबरी में। जब पैर चले जाएगा तब पता चलेगा कि उसका कितना महत्व था। तो जीवन में हर बात का एक स्थान होता है, कोई ऊंचा या कोई नीचा, और एक ही बात को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। संजोग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कभी सहन शक्ति ज्यादा चाहिए, कभी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए। तो ये सब कब कौन सी बात ज्यादा चाहिए, ये तो थोड़ा हम करेंगे तभी हम हमारे जीवन में पता लगेगा हमको। कुछ कहना है आपको? ज्ञान से बैलेंस का भान होता है, बैलेंस आ नहीं जाता है, और तुम आ जाने की बात कर रहे हो। ज्ञान से बैलेंस का पता लगता है कि बैलेंस क्या है, लेकिन जीवन में फिर उतारने जब उतारोगे तब बात होगी, तब बात होगी। ज्ञान से अज्ञान चले जाएगा, लाइट होगी तो अंधेरा चले जाएगा कि नहीं? हाँ लाइट यानी क्या, प्रकाश, ज्ञान, तो फिर अंधेरा चले जाएगा। लेकिन अंधेरा जाएगा कब, जब लाइट करोगे तब। उसी प्रकार ज्ञान की भाषा, ज्ञान की परिभाषा जान लेने से अज्ञान जाने वाला नहीं है। क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध किसने छोड़ा है बता? तो जब क्रोध छोड़ा है तब बैलेंस आने वाला है। आप जो बैलेंस की बात कर रहे हो वो कब आएगा? ज्ञान की भाषा तो सबने जाना है, सबको पता है कि क्रोध करना बुरा है, सबको पता है कि अनिति बुरी है, सबको पता है कि झूठ बोलना बुरा है, लेकिन समत्व भाव कब आएगा, बैलेंस कब आएगा? जब उसके अनुसार जीवन में तुम क्रोध कम करोगे तब मैं कहूंगी कि अब तुम्हारा बैलेंस हुआ है। खाली अंडरस्टैंडिंग के बैलेंस से बैलेंस नहीं होता है, उसमें दूसरी भी बातें चाहिए। ठीक है, બીજી લાઈનો નથી કરી?
પહેલી લાઈનો કરી.
અચ્છા ના, મેં છે ને ભાષાંતર આખા શ્લોક નું કરાવ્યું છે. જો ક્યાં હે સંજય, ધર્મ ક્ષેત્ર રૂપી કુરુક્ષેત્ર મેં યુદ્ધ કી ઈચ્છા સે ક્યાં લિખા હૈ મેને? हाँ कई बात होगी। हाँ
संजय, धर्म क्षेत्र जीवा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा थी, एकत्रित थे हमारा ने पांडुना पुत्र
એ બને જો તો, એટલે છે ને, એટલે હું ઈચ્છું છું કે બધા સબ લોગ યહાં આને સે પહેલે પ્રત્યેક શબ્દ કા અર્થ ગીતા મેં સે દેખ કર લિખ લે, उतना थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो यहाँ पर तुमको जो बातें हो रही है आसानी से समझ में आएगी। अमा माम कहा एटले मारा, पांडवा एटले पांडव ना, अपूर्वत एटले कर्यू, किम एटले शू, एवं बधु बने आवड़ी गयु। आई थिंक आपणे तो बस टाइम थई गयो छे। जल्दी टाइम तो जाता है लेकिन सिद्धांत बहुत सीखते हो ना। हाँ, एक वीक तुमको पूरा इसलिए दिया जाता है कि जो सिखाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सोचो, और सोच के आधा परसेंट भी अगर जीवन में उतारोगे तो कल्याण हो जाने वाला है। क्योंकि खूब ज्ञान लेते लेते हमारा दिमाग ज्ञान से भर गया है। मैं चाहती हूँ कि हम इस प्रकार गीता करें कि जीवन भी सुधरे, तब कहेंगे कि हम रियली गीता कर रहे हैं। ठीक है ना।